ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಉಷಾ ದೀದಿ ಕಾ ಹಮ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕಿ ತಾಲಿ ಸೇ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಭಿ ದೀದಿ ಸೇ ಪರಿಚಿತ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಸೇ ಇಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಚುನೌತಿಯೋ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ್ತೆ ಹುಯೆ ಬುಲಂದಿಯೋ ಕೋ ಛುವಾ ಹೈ. आपने सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स अपनी योग की गहन अनुभूति से ही सर्च किया और जिसके द्वारा आपने भारतवर्ष में क्या विश्व भर में बाबा का संदेश सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स के माध्यम से अनेक फैक्ट्रीज अनेक लोगों की आत्मिक ज्योति जगाई. साथ ही साथ प्यारे बाबा का एक बहुत बड़ा अरमान है गीता के भगवान को सिद्ध करना और आपका गीता के भगवान पर भी हम सब जानते हैं गहरी पैठ है और गहरा अध्ययन है और उसके माध्यम से भी बाबा से जो आपको वरदान मिला हुआ है वो आप स्थिर प्रज्ञा और वेदों की ऋचा बनकर जन मन में इस गीता के भगवान की कड़ी धारणा को बाबा की वरदान को प्रत्यक्ष साबित करने में लगी हुई हैं और सफलता की बुलंदियों को छूती जा रही हैं. ऐसी अनुभवी देश विदेश में अनेक आत्माओं को बाबा के नजदीक लाने वाली और स्वयं सदा बाबा के साथ रहने वाली ऐसी महान अनुभवी वक्ता अर्थात स्वरूप की साक्षात महाज्योति के रूप में इस भट्टी में अवतरित हुई हैं. हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी देही अभिमानी स्थिति कैसे सदा बनी रहे उसकी युक्ति और विधि हम सबको आप मार्ग प्रदर्शना में प्रदर्शित करें. आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी.
ओम शांति. बाबा हम बच्चों को हर रोज मुरली के अंदर किसी न किसी प्रकार से देही अभिमानी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, इशारा देते हैं. परंतु जब मुरली को ध्यान से सुनते हैं तो कभी तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो कभी शब्द आता है आत्म अभिमानी बनो. दोनों एक ही है या अलग है, क्या कहेंगे? अलग अलग है. तो दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है देही अभिमानी और आत्म अभिमानी में? अंतर क्या है? और आत्म अभिमानी, हाँ, देही अभिमानी और आत्म अभिमानी में अंतर क्या है? और देही अभिमानी कहते तब देही मतलब अच्छा आत्माभिमानी कहो तो परमधाम की स्थिति और देही अभिमानी कहो तो देही अभिमानी करते समय देह का भान नहीं रहना कर्म करते समय. अच्छा आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना और उसके लिए जैसे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ तब आत्मा स्वरूप हो जाएंगे ऐसे. दोनों शब्द में जो अंतर है कि हमको बाबा ने कर्म योगी बनाया है, कर्म सन्यासी नहीं बनाया है. और इसलिए जब कर्म करना है लेकिन कर्म करते समय आत्म अभिमानी नहीं बन सकते हैं। कर्म करते समय देह का भान रहता है, ये तो नहीं कि देह का भान ही न रहे, क्योंकि अगर देह का भान न रहे गाड़ी चलाते हुए तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप सब्जी काट रहे हैं और देह का भान नहीं है तो क्या होगा, उंगलियां कटेगी कि नहीं, और फिर भी अगर आपको भान ही न रहे देह का तो क्या होगा, खून भी निकलता रहेगा, भान नहीं ऐसे कहेंगे क्या। लेकिन भाव ये है कि जब कर्म करते समय देह का भान है, लेकिन कौन सा भान है, मालिक बनने का भान है, कि कर्मेंद्रिय को मालिक बन करके प्रयोग कर रहे हैं। कर्मेंद्रियां हमें नहीं चला रही है, जैसे कर्म करते समय मन भटक रहा है ये नहीं, लेकिन कर्म करते समय आत्मा मालिक स्थिति में वो इंद्रियों को अपने अधीन करते हुए उसका प्रयोग करती है, मन को अपने कंट्रोल में रख करके जो कार्य है उस कार्य के प्रति जो संकल्प है उस संकल्प को इमर्ज करती है, उस स्थिति को कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। लेकिन जब हम कर्म से निवृत्त हो जाए, जैसे अभी भट्ठी में आए हैं तो योग में बैठते हैं, तो उस वक्त कोई कर्मेंद्रिय का काम है ही नहीं, तो जब वो कर्मेंद्रिय को समेट लिया, जब बिल्कुल समेट लिया, और उस वक्त ये देह के भान से भी ऊपर चले जाओ, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, और आत्म स्वरूप का भाव क्या है कि आत्मा के जो सात गुण हैं, उन सातों गुणों का स्वरूप बन जाना, एक एक गुण का स्वरूप जैसे बनते जाना, और उस फीलिंग के अंदर, उस वाइब्रेशन के अंदर, जैसे हम अपनी आत्मा की बैटरी वो सातों गुणों से चार्ज कर रहे हैं, चारों ओर वही प्रकंपन जैसे फैल रहे हैं, और अपने चारों ओर उसी प्रकंपन का वातावरण बना रहे हैं, जिसको देवी देवताओं के चारों ओर लाइट का क्राउन दिखाते हैं, वो लाइट का क्राउन माना कि वो आत्म अभिमानी स्थिति है, जो बाबा कहते वहां आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सातों गुण का जो ओरा है, जो प्रभा मंडल है, वो जैसे उनका विकसित। वैसे भी आज की दुनिया के अंदर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वो समझने लगा है कि साधारण मनुष्य भी जब चलता फिरता है तो उसके चारों ओर भी या एक पॉजिटिव प्रभा मंडल होता है, पॉजिटिव एनर्जी का, या नेगेटिव एनर्जी का प्रभा मंडल है, और उनके पास ऐसे कैमरास निकले हैं कि मान लो कि बाबा की, मुझे एक मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था, व्यक्त बाबा ने, कि बच्चे आगे चल के उनके पास ऐसे कैमरा आएंगे, विज्ञान के पास ऐसा कैमरा आएंगे कि जो आप बैठे होंगे और वो बताएंगे कि आपका योग को कौन सी स्टेज तक आप पहुंचे हैं, वो ओरा से बताएंगे, और जितना व्यक्ति, और आज प्रैक्टिकल वो बाबा के शब्द साकार हो गए कि दुनिया के अंदर ऐसे कैमरा बन गए कि जो आपके ओरा टेस्टिंग करते हैं, और ओरा टेस्टिंग के साथ वो आपके आसपास कौन सा प्रभा मंडल है उस प्रभा मंडल को बताते हैं, उसमें कलर्स आते हैं, तो जितना कहते लाइट कलर्स होते हैं उतना उसका स्पिरिचुअल ओरा माना जाता है, और जितना व्यक्ति का डार्क ओरा होता है उतना वो नेगेटिव एनर्जी का ओरा माना जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके वो आपको टेस्ट करेंगे, और सचमुच ऐसा समय अभी आ गया है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कहीं भी केस को। खैर उनका भाव अलग है वो टेस्ट करने के पीछे, कि वो जो नेगेटिव एनर्जी जिनके अंदर ज्यादा होती है वो कोई न कोई बीमारी का कारण बताते हैं, उससे जोड़ते हैं कि भाई ये कलर का ओरा है तो इसका मतलब उसके नेचर में ये विकार है और वो विकार उसके शरीर के कौन से ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है और वहां पर वो बीमारी आने की संभावना है या बीमारी आ चुकी है वो बता देते। अभी मेरे सामने एक बहन आई थी, बेंगलोर से खास आई थी वो, और उसको कुछ तकलीफ होगी पेट की या लिवर की, कुछ तकलीफ थी उसको, तो वो कई जगह मेडिसिन ले चुकी थी लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो खास इनके पास गई, ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास गई जो ओरा स्कैनिंग करते हैं, तो उसने अपना पूरा बॉडी का ओरा स्कैनिंग करवाया और ओरा स्कैनिंग कराने के बाद जो है उसको पता चला कि उसके नेचर में ईर्ष्या का गुण है, अवगुण है, और ये ईर्ष्या का अवगुण इतनी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर जनरेट कर रहा है उसके कारण उसके ये जो शरीर का कमजोर ऑर्गन होता है उसको वो अटैक करता है और वहां से वो बीमारी उसको शुरू होती है। तो वो कलर दिखाया कि ये कलर ईर्ष्या का है, इसीलिए आपको जो है अपने नेचर क्योर करना पड़ेगा, जो बाबा कई बार कहते अपने नेचर क्योर करो। तो उसको कहा कि आप कोई प्रकार का मेडिटेशन करो और मेडिटेशन के द्वारा आप अपना ये ईर्ष्या का जो संस्कार है उसको ठीक करना होगा आपको। आपने भी करवाया होगा लेकिन ये कहानी उस बहन की मैं आपको सुना रही हूँ कि उसके बाद वो यहाँ पर आई थी तो बाबा की बच्ची काफी सालों से ही, तो इसीलिए वो यहाँ अपने घर से छुट्टी लेकर के आई, उसके परिवार से उसके पति से सबसे छुट्टी लिया उसने कि मुझे एक महीने की छुट्टी दो, मैं अपना जैसे नेचर क्योर करना चाहती हूँ। और यहाँ आकर के एक महीना सेवा के लक्ष्य से यहाँ आई और सेवा से जैसे फ्री होवे वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठती थी और उसने बाबा की लाइट उसी नेचर को दिया कि ये ईर्ष्या का जो अवगुण है मेरे अंदर इसको मुझे टोटली खत्म कर देना है एक महीने के अंदर। तो सचमुच बाबा की लाइट से उसने अपने संस्कार को परिवर्तन किया कि बाबा की पॉजिटिव लाइट मुझे मिल रही है, बाबा की सकाश मुझे मिल रही है, अमृत वेले विशेष उसने ये सकाश लिया और मैं आत्मा इतनी शुद्ध हूँ, मुझे जो है मेरा जो ये अवगुण है ये अवगुण एकदम खत्म हो रहा है, भस्म हो रहा है, एकदम समाप्त हो गया है। इस रीति उसने संकल्प करते हुए अपने स्वभाव में से वो अवगुण जो है उसको खत्म किया एक महीने के अंदर। और उसके बाद यहाँ से पुनः गई वो और पुनः जाकर फिर से ओरा स्कैनिंग कराया उसने अपने बॉडी का। पूरा ओरा स्कैनिंग कराने के बाद वो डॉक्टर्स आश्चर्य में आ गए कि एक महीने के अंदर इतना जल्दी आपने कैसे ठीक किया, और सचमुच वो ऑर्गन जो डैमेज हो रहा था उसका उस अवगुण के कारण वो ऑर्गन भी उसका ठीक होने लगा बिना किसी मेडिसिन के। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो ये सात रंग वालों मेडिटेशन कमेंट्री भी है, आजकल आपने सुना होगा सप्तरंगी मेडिटेशन कमेंट्री के, कैसे वो नेचर की क्योरी नेचर को प्यूरिफाई करना और वो ऑर्गन को कैसे, ठीक वही आज कैड में क्या हो रहा है, कैड में भी तो वही कर रहे हैं कि जो हार्ट के अंदर प्रेम की कमी होने के कारण, प्रेम न होने के कारण वो बाबा से जैसे इतना प्यार लेते हैं और हार्ट की नली को खोल रहे हैं। तो आत्मा का सातों गुणों का स्वरूप बनना और उस एनर्जी को विकसित करना ये है आत्म अभिमानी स्थिति, कि जब योग में बैठे तो देह भान से ऊपर हो करके आत्म स्वरूप माना आत्मा के एक एक गुण को अपने अंदर लाते हुए उसका स्वरूप बनना और उसके अनुभव में अपने आप को स्थित करना कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो उस स्वरूप में अपने आप को देखना, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति उसको कहा जाता है कि खाली मालिक बनकर के ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग नहीं करना, लेकिन इन कर्मेंद्रिय के द्वारा वो आत्मा के साथ गुणों को प्रवाहित करना, अपने कर्म में, व्यवहार में, संबंध में। इसलिए बाबा कई बार कहते कि भाई मैं आत्मा स्वरूप में आप स्थित हो जाओ, तो आत्मा का स्वरूप में स्थित होना और फिर अगर मैं योग में से उठूं और योग से उठने के बाद तुरंत ही मुझे गुस्सा आए तो मैं आत्म स्वरूप में स्थित ही नहीं थी। स्थित कहेंगे कि आत्म स्वरूप में स्थित होना माना मैंने अगर अपने शांति स्वरूप को इमर्ज किया हो अपने स्वरूप में, तो वो स्वरूप रहना तो चाहिए। तो जब कर्म में आती हूँ तो कर्म में भी वो शांति की शक्ति जैसे प्रवाहित हो रही है ये कर्मेंद्रिय से, व्यवहार में, कर्म में, संबंध में, तब कहेंगे ये देही अभिमानी स्थिति है। जैसे आज कोई देह अभिमान में है, कैसे पता चलता है ये व्यक्ति देह अभिमान में है? कैसे पता चलता, कोई व्यक्ति बड़ा देह अभिमान में आकर के कोई आपसे बात कर रहा है या बात न भी करता हो खड़ा है तो कैसे पता चलता है बड़ा देह अभिमानी लगता है? क्या वो निकलता, वाइब्रेशन में क्या निकलता है, क्या वाइब्रेशन से निकलता है? साथ में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है और आंखों से क्या निकलता है, आंखों से क्या निकलता है जो पता चल जाए कि ये देह अभिमानी है, अहंकारी है, बड़ा अहंकारी है? कैसे, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, खड़ा है खाली या बैठा है एक जगह पर, फिर भी आपको लगता है बड़ा अहंकारी व्यक्ति है ये? कैसे पता चल गया अहंकारी है? हाव भाव वाइब्रेशन इससे पता चलता है ना, बोल रहा है तो बोल में कैसे रोब है या दूसरे को तुच्छ समझने की एक फीलिंग है, वो लैंग्वेज है। तो उसके बोल चाल व्यवहार सब में, संबंध में वो अवगुण प्रवाहित होते हैं, क्रोध का अंश, रोब का अंश ये प्रवाहित होते हैं, तब पता चलता है ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ना? तो जहां अवगुण या ईर्ष्या करता होगा, दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा होगा, किसी के बारे में अच्छा नहीं, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, वो भी, हम जानते हैं ना उसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब उसकी जब ऐसी बातचीत होगी आपके साथ तो आप सारे आधा घंटा ऐसी बातचीत सुनने के बाद क्या कहेंगे, अरे बड़ा अहंकारी, पता नहीं अपने आप को क्या समझ, दूसरे कोई अच्छा है ही नहीं, सबकी ग्लानी कर रहा था। तो जो सबकी ग्लानी करता है खुद को अच्छा साबित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने का, ये भाव जब प्रवाहित होते हैं उसके बोल चाल व्यवहार संबंध में, तो उससे हम कहते हैं ये व्यक्ति अहंकारी है। तो देही अभिमानी मतलब कि बोल चाल व्यवहार में क्या प्रकट होना चाहिए जो पता चले कि हाँ ये देही अभिमानी है, क्योंकि आत्मा अभिमानी में बैठा है उसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन से अंदर के स्वरूप का अंदर है। लेकिन देही अभिमानी में जब आता है, कर्मेंद्रिय से जब कर्म करता है तो उसमें क्या प्रवाहित होगा, सारे डिवाइन क्वालिटीज, मृदुता होगी उसकी भाषा में, सम्मान होगा दूसरे के प्रति, आदर भाव होगा। कोई आत्मा कैसी भी है, अगर हम उसके सामने उसका वर्णन करें कि ये व्यक्ति के अंदर ये कमजोरी है, तो उसके प्रति शुभ भावना होगी। तो ये भाव जब प्रकट होने लगते हैं हर कर्मेंद्रिय से, वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। माना वो देही अभिमानी है, वो देही अभिमानी है, वो देह अभिमान नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते कि स्वर्ग में देवताएं नेचुरल देही है, वहां आत्मा का ज्ञान न होने के बावजूद भी नेचुरल देही अभिमानी है, क्योंकि उनके बोल में मृदुता, व्यवहार में मधुरता, प्यार सम्मान, यही भाव प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए तो इस दुनिया में कोई बहुत सुंदर व्यवहार करता है, बहुत मीठा बोलता है, तो उनके लिए क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है ना, ये तो जैसे देवता है, क्योंकि वो क्वालिटीज फ्लो हो रही है, वो ऊर्जा उसके कर्मेंद्रिय से जैसे प्रकट हो रही है, बाहर आ रही है। तो अब समय अनुसार बाबा हमारा स्वरूप ये देखना चाहते कि कर्म करते समय हम देही अभिमानी बने, यानी आत्मा के वो सातों गुण की ऊर्जा हर कर्म में। इसीलिए जब कोई प्यार से कर्म कर रहा है तो कहते बाबा की याद समाई हुई है उसमें, क्यों? क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा उस कर्म में है। तभी बाबा कई बार कहते थे साकार बाबा के, जो बाबा की याद में अगर खाना भी बनाते थे ना, तो वो खाना कैसा होता था, उसमें नमक मिर्ची कोई भी हिसाब इधर उधर नहीं होगा, इतना परफेक्ट होगा वो, उससे कभी कोई गलती हो नहीं सकती। जो अगर देही अभिमानी बनकर बाबा की याद में रह करके कोई कर्म करता है, उसके कर्म में त्रुटि नहीं हो सकती। वो बात आपको याद होंगी कि एक बार बाबा दिल्ली गए थे और दिल्ली में बाबा क्लास कराते थे रोज सुबह में, तो दो माताएं दूर से आती थी, बहुत दूर से आती थी और एकदम आगे आके बैठ जाती थी, तो बड़े नशे वाली होती थी और बाबा को दोनों माताओं के ऊपर जैसे बहुत विशेष प्यार था। तो एक दिन वो माताएं आई नहीं, दोनों खाली रही उनकी जगह। बाबा ने सोचा होगा कुछ, तो बाबा जब क्लास में क्लास करा के उठे और उठ करके जैसे बाहर आए, सब जा रहे थे भाई बहने, तो वो दो माताएं आई। तो बाबा ने दोनों माताओं को पूछा कि भी सुबह क्लास में नहीं आए, क्लास पूरा होने के बाद आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा हम बस में बैठे थे ना, तो आपकी याद में थे, तो कब ये बस स्टॉप चला गया ना पता ही नहीं चला, तो हम आगे पहुंच गए और फिर वहां से जब बस मिलती थी तब आते तो अभी पहुंचे हैं, है ना। तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा की याद में अगर होती थी ना तो बस स्टॉप छूटता नहीं था, बाबा की याद नहीं थी इसलिए बस स्टॉप छूट गया। उस समय दूसरी कोई बात चल रही होगी मन के अंदर, तभी वो बस स्टॉप चला गया और पता ही नहीं चला आपको। बाबा की याद होवे तो बाबा की टचिंग मिलती थी कि बस स्टॉप आ गया है ना। कहने का भावार कि बाबा की याद का मतलब ये नहीं कि कर्म में त्रुटि आने लगे, कर्म में कोई तकलीफ ये ऊपर नीचे होने लगे, उसको बाबा की याद नहीं कहते हैं। और उस समय ध्यान से अगर महसूस करेंगे तो उस समय कोई व्यक्ति की ही याद होंगी जो हमसे नुकसान भी कराती है, टूट फूट भी हो जाता है, चीज अच्छी भी नहीं बनती है ना। तो इसीलिए बाबा कहे बाबा की याद होती थी ना बस स्टॉप जाता नहीं था। तब वो माताओं को महसूस हुआ कि सचमुच बाबा की याद शायद नहीं थी, हम दूसरी कोई घर की बातें सोच रहे थे, लेकिन बाबा ने कैसे पकड़ लिया, है ना, कई बच्चे बाबा को उल्लू बनाना चाहते हैं, बाबा आपकी याद थी ना तो ये गलती हो गई। बाबा की याद हो और गलती हो, जो इतना परफेक्ट है, जो आत्मा इतनी परफेक्ट है, और उस परफेक्शन की याद में अगर हो और उस कर्म में त्रुटि हो, ऐसा कभी हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है। तो देही अभिमानी स्थिति उसको कहते हैं कि जब हर कर्म करते हुए वो आत्मा के गुण नेचुरल रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, वो है देही अभिमानी स्थिति। उसको कहते हैं अलौकिक, अलौकिक, यह लौकिक फीलिंग में नहीं है, अलौकिक है। इसलिए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा है कि अलौकिक, अंतर्मुखी और अव्यक्त, ये तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कि जब तक हम अलौकिक नहीं बनते हैं, उस लौकिकता की फीलिंग से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक अंतर्मुखी नहीं बन सकते हैं। तब तक बाह्य मुक्ता, जितनी लौकिकता होगी तो बाह्य मुक्ता स्वतः होगी, और बाह्य मुक्ता में होंगे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों का बहुत सुंदर कनेक्शन बाबा की एक अव्यक्त मुरली में, इतनी डीप मुरली थी बाबा की, कि पहले अलौकिक बनो, यानी उस आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ, क्योंकि वही आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति आगे की स्टेजेस के लिए बेस बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा। आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करने के लिए देही अभिमानी बहुत जरूरी है। कि जब सारा दिन हमारी दिनचर्या में हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो जब योग में बैठते ही आत्म अभिमानी हमारी स्थिति नेचुरल बन जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन सारा दिन की दिनचर्या में अगर देह अभिमानी स्थिति में रहे, देह भान वाली स्थिति में रहे, काम क्रोध के विकारों के वश होते रहे, क्रोध गुस्सा रोब आता रहा, ईर्ष्या द्वेष छल ये चलता रहा, माना उस देह भान के प्रभाव में रहे, हम उसके अधीन रहे, तब तक हम अलौकिक नहीं बने। तो माना योग में बैठेंगे तो आत्म स्थिति में स्थित होने के लिए टाइम लगेगा, आत्म अभिमानी नेचुरल नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरलियों में कई बार कि स्वराज्य अधिकारी कितना बने, कि अपनी कर्मेंद्रियां फुल अधिकार में तभी होंगी जब हम देही अभिमानी बनकर के कर्म कर रहे हैं। इस सब शब्दों का आपस में गहरा कनेक्शन है। देही अभिमानी होंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर देही अभिमानी ही नहीं है, वो आत्मा के सात गुण ही इमर्ज रूप में नहीं है, वो ऊर्जा ही प्रवाहित नहीं हो रही है हमारे व्यवहार में, कर्म में, फिर बैठने के समय, योग में बैठने के समय थकावट लगेगी, क्योंकि वो कर्म जो देह अभिमान में किया है, देह भान में किया, वो थकावट का अनुभव कराता है। इसलिए यहां बैठने के साथ ही नींद आना स्वाभाविक है, नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि देह अभिमान में थे तो आत्म अभिमान, थकावट हो गई तो यहां जैसे ही शांति में बैठे के सहज सो जाना स्वाभाविक होता है। इसलिए देही अभिमानी स्थिति जितनी हमारी होगी, तो जब हम योग में बैठेंगे तो थकावट नहीं, क्योंकि अलौकिक स्थिति में थे तो थकावट नहीं, लेकिन उस समय अंतर्मुखी होना स्वाभाविक हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और उस समय जैसे बैटरी चार्ज हो रही है तो उसको नींद आएगी, कभी नींद नहीं आएगी, थकावट नहीं है। देही अभिमानी स्थिति में कर्म किया था तो सारा दिन आप हल्के होके कर्म करते। जिस दिन आपको विशेष खुशी होती है, देखो दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी आप देखेंगे, किसी के घर में शादी होती है और शादी के समय उनको अगर अपने मन पसंद सब कुछ सहज रीति से मिल गया हो तो कितनी खुशी होती है। यानी वो खुशी की ऊर्जा इतनी प्रवाहित थी कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, कि सारा दिन काम करने के बाद भी थकावट महसूस होती है, नहीं होती है। दो तीन दिन लगातार अगर काम करना पड़े लेकिन वो खुशी इतनी है तो खुशी की ऊर्जा उन्हें थकावट को समाप्त कर देती है। लेकिन अगर मन पसंद नहीं मिला और व्यर्थ संकल्प चलते रहे और थोड़ा काम भी किया, कितना भारी हो जाता है और कितना व्यक्ति थकावट का अनुभव करता है ना। तो जब लौकिक दुनिया में भी इस फीलिंग का अनुभव किया है कि खुशी से उमंग उत्साह में आकर के कोई कार्य किया तो सारा दिन कितना भी काम कर लेता है वह व्यक्ति थकावट महसूस नहीं होगा, तो जहां देही अभिमानी स्थिति में अगर कर्म किया हो तो वो ऊर्जा कैसी होगी, वो थकावट का अनुभव कराएगा, कभी नहीं कराएगा। और जहां वो थकावट नहीं, खुशी खुशी से जैसे योग में भी आकर के बैठते हैं और बेज हमारा तैयार है तो बैठते ही हम उस अलौकिकता के कारण सहज अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी अंदर आत्मस्वरूप में सारी कर्मेंद्रियां समेट करके आत्मस्थिति में स्थित हो करके और एकदम जैसे अव्यक्त मिलन का अनुभव सहज कर पाएंगे। लेकिन अगर देह भान में कर्म किया, थकावट हुई, यहां आकर के बैठे, योग में बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं तो अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं, वो बैठने के बाद भी बातें चल रही है अंदर, बाह्य मुखता है, भले ये मुख बंद कर दिया है लेकिन अंदर इतने व्यर्थ के बातें चल रही है कि वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्य मुखता है तो अंतर्मुखी नहीं हो सकता, तो उस आत्मस्वरूप की स्थिति में नहीं स्थित हो सकता है। तो बाह्य मुखता है, अंदर इतने व्यर्थ विचार चल रहे हैं, ये बाह्य मुखता ही तो है, और इसलिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं। बैठेंगे लेकिन कैसे पता चलता है उसके अंदर व्यर्थ चल रहा होता है, तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं हिलते डोलते रहेंगे, कभी हाथ ऊंचा करेंगे, कभी पैर ऐसा करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी ऐसा सीधा होंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसा होंगे, ये बताता है कि ये थकावट है, और थकावट है और अभी बैठने के बाद भी बाह्य मुखता में ही है, वो व्यर्थ चल रहा है, इसलिए शरीर उसकी प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया को बाह्य स्वरूप में भी दिखा रहा है। तो ये है स्वरूप। तो जो आत्म अभिमानी है यानी अलौकिकता में है वो अंतर्मुखी उसके लिए सहज है, और अंतर्मुखी जब बैठ गया तो उसको पता भी नहीं चलता है कि कितनी देर में बैठ गया, वो पैर अगर सुन भी हो जाता तो भी उसको महसूसता नहीं आती कि पैर सुन हो गया, हाँ जब उठता है तब महसूस होता है पैर सो गया था, तब महसूस होता है इतना, और उठने के बाद भी उतनी फ्रेशनेस, क्योंकि उसने अव्यक्त मिलन का अनुभव सही स्वरूप में किया है। और यही बेस है आगे की स्थिति का भी, खाली अव्यक्त मिलन का नहीं, फरिश्ते स्वरूप का भी यही बेस है। कि फरिश्ता माना क्या, लाइट का शरीर, तो लाइट कौन सी है? सातों गुणों की ही तो लाइट है जो निकल रही है। तो जितनी ये सातों गुणों की लाइट हमारे स्वरूप से, तो चलते फिरते भी लगेगा जैसे ये फरिश्ता चल रहा है, या योग में बैठते समय भी एक सहज फरिश्ता स्वरूप का, जैसे कई बार मधुबन में आते हैं और यहाँ क्लासेस आदि सुने हैं, और सुनने के बाद जब बाबा के कमरे में या अमृत वेले बैठते हैं तो कैसे उड़ने का अनुभव होता है, इतना लाइट। क्योंकि यहाँ देह अभिमान का कोई सवाल ही नहीं, किसी से रोब से गुस्सा करने का मतलब ही नहीं, तो कहीं पर भी देह अभिमान का स्वरूप नहीं है सारा दिन, तो वो बैठते ही क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ जो बट्टी करते और सेंटर पर बट्टी करते उसमें अंतर है, क्योंकि सेंटर पर बट्टी करने का बाद भी हमारे बुद्धि के अंदर घर का कारोबार चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह घर से आते हैं सारा दिन भट्टी करने के लिए, लेकिन घर का सारा कारोबार तो अंदर भर के आ रहे हैं ना, तो भर के आ रहे हैं, वो यहाँ बैठेंगे भी योग में तो क्या करेंगे? वो उड़ने का अनुभव नहीं कर पाते, वो लाइटनेस का अनुभव नहीं कर पाते। और जहाँ हल्कापन ही नहीं तो फरिश्ता स्वरूप तो बहुत दूर है, तो इसलिए हल्कापन चाहिए। तो जितना देही अभिमानी होंगे उतना ही बैठते ही हल्कापन का अनुभव करेंगे, और उड़ने का अव्यक्त मिलन का अनुभव करके फरिश्ता स्वरूप को महसूस करना, क्योंकि हर एक का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है, जैसे ब्रह्मा बाबा का था नीचे पुरुषार्थी ऊपर संपूर्ण, तो इसी तरह हम सब का भी ऊपर संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। ये ड्रेस को छोड़ के उस ड्रेस को धारण करना है, जैसे साकार बाबा ने किया वैसे हमें भी जितना सहजता से इसके बंधन से अपने आप को मुक्त करते जाओ, मालिक बन के हर कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया होगा तो डिटैच होना सहज हो जाएगा, और जो डिटैच हो जाता है वो उस फरिश्ता ड्रेस को सहजता से धारण करके बाबा के साथ फरिश्ते स्वरूप में भ्रमण भी कर सकते हैं, फरिश्ते स्वरूप में दुनिया का चक्कर लगाते हुए दुनिया को भी सकाश दे सकते, बहुत सुंदर अनुभव कर सकते, और वहां से ही फिर आगे बीज स्वरूप में या निराकारी स्वरूप में जाना भी आसान है। इसलिए बाबा ने पिछले साल भी मुरली में कहा था साकारी आकारी निराकारी, इन तीनों स्थिति में भी आना जाना करो। साकारी माना देह भान वाली नहीं, साकारी माना देही अभिमानी स्थिति, साकारी आकारी निग्रह। जो देही अभिमानी स्थिति में होंगे साकारी में, वो आकारी स्वरूप में सहज जा सकेंगे, और जो आकारी में जाते वो निराकारी में जाएंगे, कि फिर उस फरिश्ते स्वरूप का भी छोड़ करके फिर निराकारी स्वरूप में जाना, और उस निराकारी स्वरूप में जितनी देर बैठ करके बाबा से एकदम पावरफुल लाइट की सकाश लेते जा रहे हैं, भरपूर होते जा रहे हैं, बीज स्वरूप जहाँ बस मैं बीज हूँ और बाबा भी बीज है, और बीज से मुझे जो सकाश मिल रही, जैसे झाड़ के बीज से सकाश मिलती है सारे वृक्ष को, इस तरह बाबा बीज से मुझे भी वो एनर्जी मिलती है, वो पावर मिल रही है, ये मैं पावर का अनुभव करेंगे, और जितनी वो पावर को अंदर में समाते जाएंगे उतना ही विकर्म दग्ध होने का अनुभव करेंगे, या वो जो स्वरूप है वो एक ज्वाला को प्रकट करता है, और ज्वाला स्वरूप जिसमें हमारे अनेक जन्मों के विकर्म दग्ध होने का अनुभव होता है। विकर्म दग्ध उस बीज स्वरूप या ज्वाला स्वरूप में ही हो सकता है, साकारी स्वरूप में आकारी स्वरूप में नहीं हो सकता है। उसको ज्वाला स्वरूप इसलिए कहा बहुत सुंदर मुझे किसी ने बताया कि जो ज्वाला देवी का मंदिर है ना नॉर्थ में, बोले वहां चले जाओ तो वहां पानी खोल रहा है, लेकिन अगर हाथ डालेंगे तो इतना बर्फ जैसा शीतल होगा और पानी खोल रहा है। ये प्राकृतिक है कि पानी एकदम खोल रहा है, उबल रहा है, लेकिन हाथ डालो तो इतना ही ठंडा शीतल होगा। कहने का भावार्थ, अंदर से हमारी स्थिति इतनी ही निरसंकल्प शांत, तब ये खोलने वाला ज्वाला स्वरूप। तो हमारी स्थिति का देखो प्राकृतिक में भी यादगार है, वही ज्वाला देवी का मंदिर है ना। भाव ये है कि ये हमारी स्थिति है कि इतनी गहन शांति है, इतनी गहन शांति की जैसे शक्ति स्वरूप होकर के बैठे हैं, और उसी में जैसे ज्वाला यानी वो खोलने वाला जो विकर्मों को भी दग्ध कर देता है। कितना सुंदर यादगार बना है प्राकृतिक रूप से, ये किसी मनुष्य का बना हुआ नहीं है, प्राकृतिक है, लेकिन ये हमारी स्थिति का यादगार है। इसीलिए उस स्थान का नाम ज्वाला देवी, कि ज्वाला स्वरूप है लेकिन है इतना ही शांत, डीप साइलेंस। तो बाबा भी कहते हैं जैसे डीप साइलेंस, डेड साइलेंस नहीं, डीप साइलेंस। योग में जब बैठो तो इतनी गहन शांति हो अंदर में, कोई संकल्प हमको डिस्टर्ब न करे, निराकार स्टेज में इधर उधर के कोई भी विचार मुझे डिस्टर्ब न करे, ऐसी गहन शांति हो, और उसमें जैसे मेरा स्वरूप जो ज्वाला रूप होता है तो वो विकर्म को दग्ध कर देता है। बहुत सुंदर अनुभव में आप जा सकेंगे ऐसी जब स्थिति का अनुभव करेंगे। तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति, कैसे बेज है सारी स्थितियों का, और वही हमें जो बाबा कहते कर्मातीत बनाती है, कि कर्म करते हुए उस बंधन से अतीत। क्योंकि जब देही अभिमानी स्थिति में है तो कर्म बंधन है ही नहीं, वो बांधते नहीं है। देह अभिमान वाला कर्म वो बांधता है, मैंपन वाला कर्म वो बांधता है, लेकिन देही अभिमानी स्थिति में जो कर्म कर रहा है वो बंधन क्रिएट करेगा, वो बंधन नहीं, वो कर्मातीत बना दे, कर्म को कर्म से अतीत नहीं, कर्म बंधन से अतीत, कर्म के प्रभाव से अतीत। तो कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्मातीत होने के लिए ये स्वरूप, देही अभिमानी स्वरूप में आकर के जब हम कर्म करते हैं, उस समय जो पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित होती है हमसे, ये हमें कर्मातीत बनाती है, कर्म करते हुए भी कर्मातीत, उस प्रभाव से अतीत। जहां अगर हम किसी के संबंध में भी आए तो उस संबंध में अगर कोई ने नेगेटिव बोल भी उच्चारण कर लिया, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर ली, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते, वो बोल हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते, उसको कहते कर्मातीत, कर्म के प्रभाव से, उस संबंध के प्रभाव से अतीत, ऊपर उठा लेता है, ऊपर उठा लेता है। तो देही अभिमानी बेस है सब स्थिति के लिए। अगर देही अभिमानी हम नहीं बन पा रहे, इसलिए बाबा कहते पहला लेसन सो अंतिम लेसन, अंतिम स्थिति को प्राप्त करने का भी यही बेस है। अगर ये बेस ही अभी तक हमारा बना नहीं है, उसी का नाम तो पुरुषार्थ है, यही तो पुरुषार्थ करना है हमें। और जो इस पुरुषार्थ में लगा रहता है उसके लिए हमें छोड़ना नहीं। बाबा ने इसलिए कहा कि 8 घंटे का योग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके बस मैं 8 घंटा बाबा के कमरे में बैठ जाऊं, वो योगी नहीं बनाएगा। क्योंकि वहां अगर आप देही अभिमानी नहीं तो वहां बैठ के कितना समय योग लगा। एक्चुअल कई लोग कहते हैं हम 8 घंटे के योग करते हैं हर कर्म बाबा की याद, लेकिन हर कर्म बाबा इसलिए कई बार कहते हैं वो बच्चे झूठ बोलते हैं, सीधा मुरली में आ जाता है। क्या 8 घंटा देही अभिमानी स्थिति ही नहीं रही है तो बाबा की याद 8 घंटा रहे गारंटी है ही नहीं इसकी। तो वो अपने आप में मियां मिट्ठू बन रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है, है ना। तो इसलिए बाबा कहे कर्म भी अंत तक करना है, सेवा भी अंत तक करनी है, और ये स्थिति के पुरुषार्थ भी हमारा अंत तक रहेगा ही रहेगा, इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। उसके बिना जो बैठते हैं और बस मैं बाबा के पास में उड़ के गई ये हुआ, ये इमेजिनेशन है, ये सिर्फ कल्पना है, ये योग नहीं है, ये कल्पना है। क्योंकि बिना देही अभिमानी बने, बिना आत्म अभिमानी बने, अगर हम ये सोचते रहें कि भाई मैं जा रही हूं वतन में जा रही, ये सिर्फ कल्पना है, अनुभव नहीं है, खाली आप संकल्प दे रहे हैं, लेकिन संकल्प देने के बाद भी वो बन नहीं रहे हैं, वो स्वरूप नहीं है। तो हमें कल्पना नहीं करनी है योग में बैठे बैठे, लेकिन हमें एक्चुअल उसका अनुभव करना है, ये अनुभव करना है। और उसके लिए ये आत्मस्थिति बहुत पावरफुल चीज है, जिसका अगर अनुभव कर लिया जाए तो देखो कैसी आपकी, अभी तो आप सारे कर्म से निवृत्त है, योग भट्टी में आए हैं, तो यहां कम से कम आत्मा अभिमानी तो बनो, ये बेस है। जितना आत्मा अभिमानी यानी ये सातों गुणों को आप महसूस करो, उस फीलिंग में आओ, उस वाइब्रेशंस को क्रिएट करो, फिर आपकी आगे की यात्रा सहज हो जाएगी। ये शुरुआत का ही जो बेस है उसी में थोड़ी तकलीफ होती है, जब तक अभ्यास में आ जाए वो चीज। इसीलिए बाबा कहते हैं उन सब का आधार है ज्ञान, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। गीता में भी ये बात आती है, बिना ज्ञान के ध्यान हो ही नहीं सकता है। तो मुरली बेस है हमारे लिए, इसलिए बाबा रोज मुरली सुनाता है और रोज उसको याद दिलाता रहता है, ताकि सारा दिन अगर स्मृति स्वरूप हो हम तो फिर आसान हो जाए हमारे लिए। तो ज्ञान है तो ध्यान रहेगा, सारा दिन कर्म में ध्यान रहेगा, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। और ध्यान ही नहीं रहा तो आगे बढ़ना तो फिर, इसलिए कई सालों के बाद भी कई बार लोग फील करते हैं जैसे अटक गई है गाड़ी, अटक गई है। और अटक इसलिए गई है कि ये बेस हमारा तैयार ही नहीं हुआ है, इसलिए अटक गई है, इसलिए ये बेस तैयार। तो अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है, मधुबन का ये वाइब्रेशन है, साकार बाबा की कर्म भूमि है, जहां बाबा ने खुद संपूर्णता को प्राप्त किया है, तो इसलिए यहां इतनी सुंदर ये स्थिति बनाने का जैसे कहे कि लॉटरी है, एक चांस है। यहां कोई कर्म नहीं है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनना सहज है, और सहज बनेंगे तो आगे की स्थिति सहज हो जाएंगे। तो फिर यहां अगर वो पावर भर लिया आत्म अभिमानी स्थिति बनने, तो फिर वहां जाने के बाद देही अभिमानी बनना भी आसान हो जाएगा। और यही योग का प्रयोग है, इसीलिए योग का दूसरा नाम है प्रयोग। अगर ये प्रयोग में नहीं आया, यानी प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं आया, तभी तो आजकल की दुनिया के अंदर बच्चे भी मां बाप को या उनके परिवार से अगर कोई ज्ञान में आते हैं और ज्ञान सुनने के बाद योग बट्टी करने के बाद आप अगर जाकर के गुस्सा करेंगे तो क्या कहेंगे? वहां जाकर के यही सीख क्या है क्या? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे, छोटे बच्चे भी आपको कहेंगे अगर आपने गुस्सा किया तो क्या कहेंगे? यही सिखाते हैं, कहते हैं आपको घर में सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता है। यानी वो अभी वो बच्चे भी देखना चाहते हैं कि ये देही अभिमानी कितने बने। देखो, भक्ति मार्ग वालों को कोई याद नहीं दिलाएगा, लेकिन हमें हर पल लोग याद दिला रहे हैं कि आप देही अभिमानी बने। गुस्सा तो अभी इतना ही है, गुस्सा तो कम हुआ ही नहीं है। क्या योग करते हैं आप? वो भी जानते हैं कि गुस्सा अगर हो रहा है तो उसका योग क्या लगता होगा। आज एक अज्ञानी व्यक्ति, एक बच्चा भी समझ रहा है कि बिना देही अभिमानी स्थिति के उसका योग कैसे लगेगा। तो हम क्या कहते हैं? चुप बैठ। हमको कह दिया तो हम क्या कहेंगे? चुप बैठ। भावार्थ ये कि अंदर में हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी वहां कहीं ना कहीं कोई संस्कार के आगे हम लाचार हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। इसलिए वो संस्कार हमारा स्वरूप में वापस आ जाता है। देही अभिमानी ने, इसलिए घर के परिवार के सदस्य भी अभी हमें देखना चाहते हैं कि ये सचमुच देही अभिमानी बने, ये यहां देवता बने। तो कई लोग क्या कह देते, अरे अभी तो पुरुषार्थी है ना, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं। लेकिन पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ क्या है? अगर रोज रोज मैं गुस्से का स्वरूप ही बनती जाऊं तो देह अभिमान के ही वश हूं, तो देही अभिमानी नहीं बनी हूं, तो पुरुषार्थ क्या है? बेसिक पुरुषार्थ तो यही है हमारा कि हर गुण की ऊर्जा मुझसे प्रवाहित होनी चाहिए। हर गुण की ऊर्जा, सोले देवताओं की महिमा में गाते हैं ना, बाबा कई बार सवाल पूछते क्या बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, राम सीता बनना चाहते हैं। क्या कहते हैं हम सभी? लक्ष्मी नारायण। एक ही आवाज में कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना चाहते। तो लक्ष्मी नारायण किसको कहा जाता है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व गुण संपन्न। तो वो हर गुण की ऊर्जा मुझसे प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है कि बार बार हम उसी में फेल हो रहे हैं, है ना? तब जाकर के हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर बार बार फेल होते रहेंगे तो कहां जाएंगे? तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? फिर तो राम सीता ही बनना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छे हैं कि कम से कम हमारे घर के सदस्य हमें बार बार याद तो दिलाते हैं। क्या योग करते हैं? क्या योग करते हैं? इतना गुस्सा करते हैं, क्या योग करते हैं? वो याद दिलाए तो अच्छी बात है ना, कि कोई तो हमें स्मृति दिलाने वाला है। अगर वो भी नहीं होते थे तो, वो भी नहीं होते थे तो हम तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। इसका मतलब वो अटेंशन तो खींचवाते कि अभी तक तुम्हारा पुरुषार्थ में कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं। तो ये देही अभिमानी स्थिति हमारा बेस है, और ये बेस के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, पुरुषार्थ के यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और उसको अगर सहज करना है तो हाँ, ये जरूर है कि बाबा ने जैसे अभ्यास किया कि दिन भर बाबा को टाइम नहीं मिलता, बाबा 2:30 बजे उठ करके भी उसका पुरुषार्थ करते थे, आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करते थे। वो सातों गुणों की ऊर्जा से जैसे अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर देते थे कि साकार में, हर कर्म में वो ऊर्जा जैसे प्रवाहित होती थी, वो प्रेम, शांति, आनंद, उमंग, उत्साह, खुद भी और 93 ईयर्स की एज में खुद भी और दूसरों में भी बाबा भर देता था। इतनी बाबा की बैटरी चार्ज होती थी। अगर बाबा 93 ईयर्स की एज में कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये पुरुषार्थ अभी हमें क्या करना है, इसमें माहिर बनना है। और ये परिवर्तन यहां से ऐसा हम करके जाए, सातों ऊर्जा से अपनी बैटरी को ऐसे भर के जाए कि वहां जाने के बाद आपके परिवार के सदस्य भी देखते रह जाए, आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे ये इन्होंने तो करना शुरू कर दिया, अब ये तो गुस्सा करते ही नहीं है। ठीक है ना, ये देखना चाहते हैं हर एक। और तभी आप बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे, तभी वो भी मानेंगे कि हाँ सचमुच इसको भगवान पढ़ा रहा है, नहीं तो अपने आप में नहीं बनता था, ये भगवान पढ़ा रहा है इसीलिए बन रहा है। तो भगवान की प्रत्यक्षता भी यही स्वरूप हमारा करेगा। जो अंतिम प्रत्यक्षता होगी वो तभी होगी जब ये हमारा स्वरूप बन जाए। तो देह अभिमान के स्वरूप में रहेंगे तो क्या बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बन पाएंगे? क्या कहें, बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये है एक ही शब्द, लेकिन एक शब्द की गहराई कितनी है देख लो, कितनी गहराई है। देही अभिमानी स्थिति रोज सुनते मुरली के अंदर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
मैं आत्मा हूँ,
मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार,
मैं आत्मा हूँ।
जो लिखे हैं प्रभा, जहाँ नहीं शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे घर में बसेरा, शक्ति सागर की पहचान हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा
मैं, आत्मा हूँ
मुझ में भरे है गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार, गुणों का मैं करती दान हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ
मैं, आत्मा
मैं, आत्मा हूँ।